आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। इस बार आम आदमी के लिए आयकर में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। केवल रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सीमा को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च किया गया है। मोदी सरकार के इस बजट के कुछ खास प्रावधान हैं। इंफ्रा के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर, बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण, 10,000 करोड़ रुपए निवेश के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना, भारत के अपने सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का लॉन्च, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट। इन्हीं प्रावधानों के तहत कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब्स, कैंसर की 17 दवाओं पर 0 आयात शुल्क, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, लड़कियों के लिए हर जिले में 1 हॉस्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अपार अवसरों का राजमार्ग बताया।
ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी।
लेकिन लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने बजट की आलोचना की है और इसे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मध्यम आय वर्ग और बेरोजगार युवकों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट की कई मापदंडों पर आलोचना करते हुए कहा कि इकोनॉमिक सर्वे और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा इंगित की गई चुनौतियों, मसलन अमेरिका द्वारा लगाए गए ट्रेड टैरिफ, वैश्विक व्यापार युद्ध, चीन के साथ $116 बिलियन के व्यापार घाटे, लगातार गिरते रुपए आदि का समाधान देने के बजाय यह एक लुभावने शब्दों का मायाजाल है।
None, not one of the challenges were addressed by the finance minister. It was therefore not surprising that the applause was perfunctory and most of the audience tuned out in quick time. She has peppered her speech with schemes, programs, missions, institutes, initiatives, funds, committees, hubs. I counted at least 24. I leave it to your imagination how many of these will be forgotten and vanish by next year. Our verdict is that the budget speech and the budget failed the test of economic strategy or economic statesmanship.
बजट की पूर्व संध्या पर शनिवार को कांग्रेस ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की एक कथित ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर कई सवाल दागे। इस कथित ईमेल में एपस्टीन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनसे सलाह लेने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए इसराइल में नाचने और गाने की बात कही थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी से कई तीखे सवाल पूछे।
प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इसराइल के दौरे पर थे और एपस्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इसराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एपस्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इसराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एपस्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एपस्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री का एक ऐसे बदनाम व्यक्ति के इतने करीब होना उनके फैसलों, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्रालय ने अपने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के माध्यम से एक बयान जारी कर एपस्टीन फाइल्स में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा, एपस्टीन एक घोषित अपराधी है, उसकी बातें गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए।
हमने तथाकथित एपस्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर ईमेल को एडिट करने का आरोप लगाया।
जेफरी एपस्टीन किसी और के साथ बात कर रहा है ईमेल के माध्यम से, दोनों ही डिस्क्रेडिटेड व्यक्ति हैं, दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विषय में हमें पता नहीं। उस ईमेल को कांग्रेस पार्टी ने एडिट किया है। उस ईमेल में हिज एडवाइस, जहां की हिज नहीं लिखा हुआ है, हिज जोड़कर दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है और हिज शब्द जोड़ करके इस प्रकार से उसे चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है, मानो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेफरी एपस्टीन से कोई एडवाइस लिया। ईमेल में भी नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी ने एडिट करके, फ्रॉड करके, 420 करके उसमें हिज शब्द जोड़ा है।
रविवार को एपस्टीन फाइल्स का एक और खुलासा सामने लाते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी और एपस्टीन के बीच 16 मार्च 2017 को हुई चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें वे एपस्टीन से ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और करीबी स्टीव बैनन से मुलाकात में उसकी मदद मांगते नजर आ रहे हैं। साथ ही वे ट्रंप और मोदी की मुलाकात में भी एपस्टीन की मदद मांग रहे हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम भी बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। साथ ही न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में विकलांग लोगों के लिए अनुकूल टॉयलेट बनाए जाएं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने 2022 में एक जनहित याचिका में मांग की थी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाए। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। शनिवार को हजारों लोगों ने राजधानी इम्फाल की सड़कों पर राज्य को बांटने के खिलाफ सेव मणिपुर रैली निकाली। यह विरोध प्रदर्शन मैतेई सिविल सोसाइटीज ग्रुप्स की अम्ब्रेला संस्था कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकॉमी द्वारा आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकीजो समुदायों के बीच चल रहे जातीय तनाव के बीच हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने उग्रवादी संगठनों द्वारा कारोबारियों को फोन कर रंगदारी की मांग का भी विरोध किया। उन्होंने सरकार से कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट को भी रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारी मणिपुर की क्षेत्रीय एकता की रक्षा और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांग वाले पोस्टर पकड़े हुए थे। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।